हरे कृष्णा हरे कृष्णा
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 कृष्णा हरे 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 राम
राम
राम राम हरे 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 कृष्णा। प्रिय पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देश भक्तवृंद, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, आप सबका वंदना। श्रीमद् भागवत के अंतर्गत जो प्रार्थनाएं हैं उनका श्रवण वर्णन करने के शुभारंभ में कल हमने मंगलाचरण के पहले श्लोक का पाठ किया था, जो भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना है और पूरे भागवत का जो विषय है वो भगवान श्री कृष्ण है। उसका स्वरूप लक्षण परम सत्य है, कृष्ण एब्सोल्यूट ट्रुथ है, बाकी सत्य सारे उसके ऊपर आश्रित हैं। और उसके तटस्थ लक्षण में सृष्टि आदि सब, कैसे ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, कैसे बड़े बड़े देवता और ऋषि मोहित होते हैं, पर त्रिगुणी माया से जना बना हुआ ये संसार सबको लुभावने वाला सत्य लगता है लेकिन अस्थाई है। भगवत धाम नित्य है, शाश्वत है, वह माया का प्रवेश नहीं है। ऐसे भगवान परम सत्य श्री कृष्ण में हमारा हमारी बुद्धि उसका ध्यान करे, उसका वर्ण करे, ऐसा पहले श्लोक का कल हमने भाव पढ़ा। परम सत्य श्री कृष्ण है, इसके लिए मध्यम मंगलाचरण जो कल है 10:2 में सत्यव्रतम वाला वो पढ़ा, 10:2:26 ऐसे था। और तीसरा मंगलाचरण जो हमने आपको कहा था वो भी 12:13-19 है, उसमें भी सत्यम परम शब्द है, तो वो श्लोक भी पढ़ लेते हैं। कस्माद् येन विभासितो अयम् अतुलो ज्ञान प्रदीप पुरा तदरूपेण च नारदाय मुनि कृष्णाय तत्रूपिणा योगिन्द्राय तदात्मनाथ भक्तराताय कारुणया तशुद्धं विमलं विशोकं अमृतं सत्यं परं धीमहि। ये भागवत सत्यम परम धीमहि है, जो नारायण ने पहले, कैसे है भगवान नारायण, शुद्ध है, विमल है, विशोक है, अमृत है, सत अमृत है। उन्होंने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद को दिया, नारद ने व्यास को दिया, व्यास ने सुखदेव को दिया और सुखदेव ने परीक्षत को सुनाया, विष्णुरात परीक्षत का नाम है। तो इसके बाद हमने दूसरे श्लोक का शुभारंभ किया था। इस श्लोक के अंदर शुद्ध भक्ति अभिधेय जो है और आशीर्वाद है, और भागवत सब्सटेंशियल है, इसका मतलब इसका सब्सटेंस जो है वो वास्तव है। वास्तव का मतलब है नित्य, सदा रहने वाला, तीनों कालों से परे। और वस्तु क्या है? वो वस्तु है भगवान का गुण, रूप, नाम, लीला, भक्त और भक्ति। धर्महाप्रोजित कैतवो अत्र निरपरमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवं अत्र वस्तो शिवदं तापत्र्यमूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परईश्वरः सदयो हृदयावरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रुभिस्तत्क्षणात्। तो कल हमने इस श्लोक का भाव का रसास्वादन कर रहे थे। ईश्वर सद्यो हृदय अवरुद्धयते, ये एकमात्र, इसमें अत्र शब्द दो बार आया, देखो पहली लाइन में अत्र है, दूसरी लाइन में भी अत्र है, दो बार कहने का मतलब ये एकमात्र, एक यही भागवत ऐसा दुर्लभ ग्रंथ है जिसमें एकमात्र अत्र, अत्र का मतलब यही एक भागवत ऐसा ग्रंथ है जिसके द्वारा भगवान को हृदय में भगवान को हृदय में धारण किया जा सकता है, भगवान वश में आ जाता है। भगवान वश में कैसे आता है? सिर्फ भागवत के द्वारा, ज्ञान के द्वारा नहीं आ सकता, योग के द्वारा नहीं आ सकता है, कर्म के द्वारा नहीं आ सकता है। सद्यो हृदय अवरुद्धेते जो है, केवल एकमात्र भागवत ही ऐसा ग्रंथ है जो भगवान को हृदय में अवरुद्ध कर लेता है। भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, भक्त भागवत सुनने जाता है उसके हृदय में बैठ के और आनंद लेते हैं। और ये एकमात्र, अत्र का और अर्थ है, ये एकमात्र भागवत ही है और कोई नहीं है जिसमें जिसमें वास्तव वस्तु है। वास्तव का मतलब, वास्तव वस्तु का मतलब नित्य शाश्वत, तीनों गुणों से परे और भूत वर्तमान और भविष्य से परे, आध्यात्मिक जगत का साक्षात भगवान श्री कृष्ण, उसका नाम रूप गुण लीला, ये है सब्सटेंस। ये एकमात्र श्लोक है जिसके अंदर ये बातें हैं। अन्य स्थानों पे स्वर्ग आदि का वर्ण है, वो है, इसमें वो कुछ भी नहीं है। और ये एकमात्र पुस्तक है जिसमें परम धर्म का वर्णन है, जिसमें कैतव धर्म को निकाल दिया है। कैतव धर्म में सकाम कर्म, निष्काम कर्म, ज्ञान, योग, ध्यान, इन सब को नमस्कार करके बाहर कर दिया गया है। केवल परम धर्म का इसके अंदर प्रमाणिक रूप से एक ही शास्त्र है जिसमें ये है। तो ये इसका भाव है, धर्म के हृदय में भगवान वश में हो जाते हैं। किसके? जो योग्य हो, जिस जो अधिकारी हो। कृति भी, यहां भी अत्र, अत्र कृति भी ही। तीन बार ये अत्र, तीसरी बार भी आया है। बार बार अत्र आने का मतलब है एकमात्र भागवत ऐसा। तो कृति भी का मतलब सुकृति भी, सुकृति भी का मतलब भक्ति जनित सुकृति, कई जन्मों से जिसकी भक्ति से भागवत को सुनने के लिए टेस्ट, या जिसको कहा जाए रुचि उत्पन्न हुई है, उसके हृदय में भगवान तत्काल। और रुचि क्या, रति अगर हो गई, रति भाव को कहते हैं, क्योंकि ये है भाव वाला, ये ग्रंथ ऐसा है जो भाव तक तत्काल ले जा सकता है। और कौन सुश्रुभि, भी जो श्रवण के लिए तत्पर रहे, उसके हृदय में तत्क्षणात, उसी समय। वैसे तत् का अर्थ है कृष्ण, एक अर्थ तत् का हो जाएगा कृष्ण, और क्षणाकृत का मतलब उत्सव। तो उसके हृदय में भगवान श्री कृष्ण आनंदित होके मन मंद मंद मुस्कुराते रहेंगे और वो आनंदित हो जाएगा, उसके लिए तो उत्सव हो जाएगा। किसके लिए? जो भागवत के श्रवण के लिए अधिकारी है। और जो अभी तक अधिकारी नहीं है वो भी श्रवण करेगा तो थोड़े समय के बाद अधिकारी बन जाएगा, तत्क्षणात नहीं तो थोड़े समय के बाद बन जाएगा। तो ये भागवत दिया किसने? श्रीमद् भागवत भागवते महामुनि कृते। तो महामुनि के लिए यही श्लोक जो तीसरा अभी हम पढ़ रहे थे, 12, 13, 19, इसी का उल्लेख किया है कि भागवत साक्षात भगवान ने, नारायण ने, जो विशुद्ध है, जो विमल है, जो अशोक है, कोई शोक नहीं है, उन्होंने चतुर्श्लोकी के रूप में सूक्ष्म भागवत ब्रह्मा जी के द्वारा नारद तक पहुंचाई। नारद ने व्यास को दिया, व्यास देव ने विस्तार किया, तो महामुनि व्यास भी है लेकिन आदि पुरुष ने दिया है, तो महामुनि करते। और भगवान ने जब दिया जिसके अंदर सब कुछ है, तो फिर और किसी शास्त्र की कोई आवश्यकता नहीं, और सब शास्त्रों का सार इस ग्रंथ के अंदर है। और फिर लिखा है इसमें है क्या? वैद्यम, वैद्यम का मतलब है जान लो, वेद भी है और जानना भी है, वेद का मतलब जानना। क्यों जानो? वास्तव वस्तु को जानो। भागवत हमको वास्तव वस्तु की पहचान कराएगी। तो वास्तव क्या है? वास्तव है नित्य, वास्तव का मतलब जो नित्य रहने वाला है, जो भूत भविष्य और वर्तमान से प्रभावित नहीं होता है वो वास्तव है, और वो वास्तव है भगवान का धाम, वो वास्तव है भगवान का नाम, वो वास्तव है भगवान, भगवान की लीला, भगवान का गुण, भगवान के भक्त और भगवान की भक्ति, और ये है वस्तु, ये है वास्तव वस्तु। बोला इस वास्तव वस्तु को अगर हम प्राप्त कर लें तो हमें क्या प्राप्त होगा, शिवदम, आपका कल्याण हो जाएगा, ये मंगलकारी है। और क्या करेगी, तापत्रय उन्मूलनम, तीनों तापों को जड़ से उखाड़ के फेंक देगी, तापत्रय उन्मूलनम। तो विशेषता क्या है इसकी, धर्म प्रोजित कैतव, प्रोजित का मतलब पर जो है इसका मतलब, उजित का मतलब निकाल देना, और पर का मतलब ऐसे धर्म जिन जिन में स्वर्ग आदि और मुक्ति का लुभावना लोभ है, ऐसे सब धर्मों को निकाल दिया है, कैतव धर्म। और अभी बताया था कौन से कैतव धर्म, सकाम कर्म, निष्काम कर्म, ज्ञान, मुक्ति, सबको निकाल दिया। तो कौन सा धर्म है, परमो, इसमें परम धर्म है, धर्म लगेगा परम के, परम के साथ में, ये परम धर्म है। और क्या है, प्रेम रूप परम धर्म है। प्राप्त किसको होगा, निर्मत्सराणाम सता, जिसका हृदय पूर्ण रूप से शुद्ध हो गया है, जिसके हृदय में भगवत प्रेम का प्रकट्य हो गया है, ऐसे भक्तों को वास्तव वस्तु कल्याणकारी, दुखों को से मुक्त करके और श्री भगवान श्री कृष्ण को हृदय में अवरुद्ध करने वाली तत्काल भागवत सुनने से प्राप्त हो जाएगी, ये इस श्लोक का भाव है। इस श्लोक में श्री प्रभुपाद के तात्पर्य में विशेष रूप से कैतव प्रोजित धर्म, उसके ऊपर प्रायः सारा तात्पर्य का पहला से 80% इसके ऊपर है कि संसार के अंदर सब लोग जितने धर्म मजहब हैं उनका एक ही उद्देश्य है कि धन कहाँ है, आर्थिक व्यवस्था कैसे सुधरे। और जब ये ऐसे जब मजहब होते हैं, ऐसे जब धर्म होते हैं जिनका मूल लक्ष्य आर्थिक व्यवस्था, और आर्थिक क्यों व्यवस्था, व्यवस्था सुधारनी है क्योंकि भोग करना है, तो भोग करना है तो फिर एक दूसरे से प्रतिद्वंद्वी हो जाएंगे, एक दूसरे से कॉम्पिटिशन हो जाएगी, और फिर एक दूसरे का व्यक्ति व्यक्ति के साथ और महिला महले के साथ, गांव गांव के साथ, देश देश के साथ, ऐसे तो ये प्रतिशोधा, ये तो कॉम्पिटिशन चलती रहेगी क्योंकि भोग है सबको चाहिए। तो ये धर्म जो है ये भागवत से निकाल दिया गया है। तो भागवत में कैसा धर्म होना चाहिए, बोल जिसमें कॉम्पिटिशन नहीं हो, प्रतिद्वंद्व नहीं हो, सहयोग हो, वो कौन सा है, परम धर्म है। परम धर्म जो भगवान भागवत धर्म है उसमें सब एक दूसरे के सहयोगी हैं, भगवत धाम में एक दूसरे का सब सहयोग करते हैं, दूसरे अच्छे काम करने वाले को भगवान से मिलाने में उनको अच्छा लगता है। तो प्रभुपाद जी का मुख्य तात्पर्य इसके ऊपर है, और फिर विशेष रूप से श्रवण के ऊपर मुख्य प्रभुपाद जी ने श्रवण का वर्णन बहुत विशेष रूप से किया है। और हम अगर चक्रवर्ती पाद का हम भाव देख रहे थे, बहुत सुंदर है, थोड़ा सा उसका रसादवंत करते हैं, तीसरे श्लोक में जा रहे हैं। कल हमने यहां तक छोड़ा था कि ये पद्म पुराण का जो श्लोक हमने पढ़ा था, मधुर मधुरम, ये अति मधुर है। क्या मधुर है, पद्म पुराण ने लिखा था, पद्म पुराण के प्रभाष खंड में ये श्लोक है, मधुर मधुरम एतन मंगलम मंगलानाम, मधुर में मधुर है, मंगलों में मंगल है, सब मंगलकारी कार्यों में सर्वश्रेष्ठ मंगल है, सकल निगमावली यत फलम चित स्वरूपम, सकल एक बार निगमावली, निगम वैसे वेद को कहते हैं, हम आगे आएंगे, वेद निगम कहते हैं वेद को। निगम का मतलब है जिसके जिसके पास, जिसको आसानी से जिसके पास पहुंचा ना जा सके। गम्यम का मतलब पहुंचना, निक का मतलब नहीं। तो वेदों को सीधा कोई नहीं पढ़ सकता है। वेद है समुन्द्र के समान, समुन्द्र अथाह है लेकिन उसका पानी न पीने के काम का है न खेती के काम का है। ऐसे वेद बहुत बड़ा विस्तार ज्ञान है लेकिन सबको सामान्य समझ में नहीं आएगा। तो इसको वृक्ष के, और वृक्ष इसको इसलिए भी कहते हैं कि वृक्ष का काम है फल देना। तो वेद के वाक्यों के ऊपर चलेंगे तो धर्म अर्थ काम मोक्ष ये फल मिलेंगे, तो इसलिए उसको वृक्ष वृक्ष कहते हैं। लेकिन उसका पका हुआ फल है, सकल निगम वली सत फलम, सत फलम, ये जो भागवत रूपी फल है। चित स्वरूपम, ये तो भक्ति प्रधान जो स्वरूप है भगवान, जो भगवान की स्वरूप लक्षी जो शक्ति है भक्ति, उसको देने वाला है। सकृदि परिगीतम श्रद्धयो हे लयावा, कभी एक बार सुन ले, एक बार ही सुन ले सकल निगम सारे वेदों का, और सकृद एक बार, और सकल और सकृद अगर उसको पी ले और उसको सुन ले, श्रद्धया परिग्रहण ग्रहण करे श्रद्धा के साथ। ग्रहण करे का मतलब सुनने के बाद समझे, समझने के बाद उसको जीवन में अपनाए, तो ये हो गया ग्रहण। ग्रहण का मतलब सुनना समझना और उसको अपनाना, श्रवण मनन और निध्यासन, ये तीनों हो जाएंगे। तो हे लया वाह, कभी कभी ऐसे, कभी श्रद्धा से करे या बिना श्रद्धा के करे। भृगोवर नर मात्रम तारयते कृष्ण नाम, कृष्ण नाम हे भृगु श्रेष्ठ मानव को तारने वाला है। और फिर भागवत के लिए भक्ति रसामृत सिंधु से ये श्लोक लिखा है, दुराहावद्भूत वीर्यास्मिन श्रद्धा दूरे अस्तु पंचके, ये पांच चीजों के ऊपर थोड़ी सी भी श्रद्धा हो, बहुत अल्प श्रद्धा हो इन पांच के ऊपर। पांच क्या है? वृंदावन भगवान का धाम, भगवान का नाम दो, भगवान के भक्त तीन, भागवत चार, और भगवान का सुंदर श्री विग्रह पांच। थोड़ी भी श्रद्धा अल्प, अस्मिन श्रद्धा दूरे अस्तु पंचके यत्र स्वल्पो अपि, स्वल्पो अपि थोड़ी सी भी हो, संबंध सद धीयां भाव जन्मने, सद धीयान जो भक्त है उसकी बुद्धि में भगवान की भाव भक्ति की झलक जागृत हो जाएगी। तो ये है भाव भक्ति को भागवत तत्काल जागृत करने में बहुत ज्यादा सहायक है। और सद्य और कृति भी, सद्य और कृति भी दोनों को साथ मिला है तो मतलब है जो योग्य व्यक्ति है उनके हृदय में भगवान तत्काल आ जाएंगे और प्रेम से, प्रेम की डोरी से बंध जाएंगे। और जो नहीं है, अगर सुकृति जिनकी नहीं है तो बोलो आएंगी। प्रभुपाद ने लिखा ऐसे हम कहते हैं लोगों को कि आइयो भागवत की कथा चल रही है, तो आने में रुचि नहीं है लोगों की, क्योंकि उनके अभी सुकृति का उदय ही नहीं हुआ है। वैसे दुनिया के घंटों बैठ के टीवी के बैठक ऊपर बैठ जाएंगे, राजनीति की बातें करते रहेंगे और लोक लोक में कई बातें करते रहेंगे जिनका कोई अर्थ नहीं है, जो वास्तव है ही नहीं, अवास्तव है, उनमें तो समय बहुत गंवाएंगे। लेकिन वास्तव भागवत जो वस्तु शिवदम है, कल्याणकारी है, उसमें रुचि नहीं रखते। लेकिन कोई भाग्य से रुचि रख ले, योग्य नहीं हो तो भागवत उसको योग्य बना देगी। जैसे कल हमने पढ़ा था, सनातन गोस्वामी ने कहा ऊंचा नीचा करो, असाधु साधु करो, भागवत में ये शक्ति है। तो आगे लिखते हैं ये भागवत, आगे तीसरे श्लोक में आएगा, पीबत भागवतम रसमालयम हो और रसिक भो विभाविका, सबको निमंत्रण दिया जा रहा है कि इस भागवत के रस का रसास्वादन करो। ये हमारे कल की प्रार्थना में आएगा। और सुखदेव महाराज की प्रार्थना है, लेकिन इसमें कहा क्या गया है वो आज कह रहे हैं, कल फिर पढ़ेंगे। यह स्वानुभावम अखिल श्रुति सारम एकम, सारे वेदों का सार जो है अध्यात्म दीप, यह है भागवत अध्यात्म दीप। कृष्ण को भी आध्यात्मिक दीप कहा गया है, भागवत को भी आध्यात्मिक दीप कहा गया है। अति तरी शताम तमो अंधम, जो अंधकार मय इस जगत के अंदर डूब रहे हैं उनको तारने के लिए, ऐसे नहीं है कि बोल जो जो साधु पुरुष है और जो भक्त है उनके लिए नहीं, जो अंधकार में कलयुग में डूब रहे हैं उनको तारने के लिए। संसारी नाम करुणा करुणया, संसारियों के ऊपर, संसार का मतलब जन्म मृत्यु के अंदर डूबते हुए चक्कर में फंसे हुए, करुणया उनके ऊपर करुणा करे। पुराण गुह्यम, इस बहुत रहस्य में भागवत पुराण को, तम व्यास शोनम, व्यास के पुत्र सुखदेव ने, उपयामी मुनि नाम, बड़े बड़े ऋषियों के बीच में सामान्य व्यक्ति के कल्याण के लिए दिया। इसका मतलब ये कैसा है, अगर कोई सुकृति वाला भक्त इसका श्रवण करेगा तो भाव भक्ति का उदय हो जाएगा और कृष्ण हृदय में प्रकट हो जाएंगे और कृष्ण की लीलाओं की रसास्वादन होना शुरू हो जाएगा। अगर कोई उसकी सुकृति उदय नहीं हुई है, शुद्ध स्तर पे नहीं है, तो भी उसका अंधकार नाश हो जाएगा क्योंकि दीप का काम करेगा, अज्ञानता नाश हो जाएगी और वो आस्ते आस्ते आगे बढ़ेगा। ऐसे अवहेलना करके चला भी जाए ना तो भी उसको लाभ होगा, भागवत इतना शक्तिशाली है। तत्क्षणात्, अभी बताया तत्कृष्ण है और क्षण उत्सव है, ये केवल एक ऐसा शास्त्र है जिसमें सुनने वाले के हृदय में कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं, अरे मेरी कथा सुना, कितना बड़ा दुर्लभ ही है इसका सौभाग्य है कि मेरी कथा में इसको रुचि हो गई। कृष्ण मंद मंद मुस्कुराने लगेगा हृदय में आकर, तो ये इसका अर्थ है तत्क्षणात् का। और फिर भागवत कैसे दी गई महामुनि के द्वारा, महामुनि की परिभाषा अभी हमने आपको बताई थी कि भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया, इसका वर्णन किया है चक्रवर्ती पाद ने। और वास्तव, वास्तव और वेद्यम, वेद्यम का मतलब जानना, और वास्तव का अर्थ लिखा है जिसका न आरंभ हो न मध्य हो न अंत हो, उसको कहते हैं वास्तव। ये भगवान का जगत भी वास्तव है और वैकुंठ भी वास्तव है, लेकिन वैकुंठ है असली वास्तव, जगत जो थोड़ी देर रहता है उसको अवास्तव कहते हैं, वास्तव अवास्तव। तो ये अवास्तव है संसार, भगवान और भगवान का नाम वास्तव है। और फिर प्रोजित की बात की है, भक्ति सब प्रकार का सुख प्रदान करती है, इसलिए ये अभिदेव है, अभिदेव तत्व है जो इस श्लोक में चक्रवर्ती पाद कहते हैं बताया गया था है कि सभी लोग इसका सुख ले सकते। सवई पुंशाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्ष जय अहितुकीय प्रतिहता यया आत्म सुप्रसीदति, कि सबके लिए सौभाग्य है कि कोई भगवान के अनन्य भक्त बन सके और ऐसी भक्ति करे जिसके अंदर कोई रुकावट न हो, तो ये सब के लिए है। अत्र का परिभाषा बताई, अब श्री प्रभुपाद जी का तात्पर्य, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि आज ऐसी स्थिति है कि लोग भौतिकवाद में इतने फंस गए हैं, धर्म के नाम में अर्थ में इतने अटक गए हैं कि गिरजाघर मस्जिद और मंदिर खाली दिखते हैं, प्रभुपाद का ये भाव है यहाँ। तो अब हम तीसरे श्लोक का आज श्रवण करने जा रहे हैं, मंगलाचरण का तीसरा श्लोक पढ़ते हैं। निगम कलपत्र गलितम फलम सुख मुखादम मृद्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मो रसिका भुवि भावुका। निगम कल्पत्रु गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम पीवत भागवतम रसमालयम मोह अहो रसिका भुवि भावक। दूसरे श्लोक के अंदर भक्ति भागवत के अंदर जो भगवान को बस में कर सकती है उसका आशीर्वाद मिला। और भागवत कितनी मधुर है, रसमय है, अखिल रस मूर्ति भगवान श्री कृष्ण का रस आस्वादन करने वाली है। और उस कैसे ये प्रकट हुई और इसको कौन पिए और कब तक पिए, इसका वर्णन इस श्लोक में है। तो निगम का अर्थ है वेद, और कल्पतरु का मतलब इच्छा पूरी करने वाला वृक्ष। वेद सबकी इच्छा पूरी करते हैं, और इसको वृक्ष क्यों कहा गया, क्योंकि ये फल देता है। श्री प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखा है वेदों के अंदर सभी विज्ञान है, धर्म अर्थ काम मोक्ष से के अतिरिक्त जितने भी दुनिया के अंदर, चाहे भूगोल हो, चाहे खगोल हो, चाहे वेद आयुर्वेद हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे व्यवसाय हो, अर्थशास्त्र हो, सब कुछ वेदों के अंदर तो पूरी जानकारी है, क्योंकि उससे बाहर कुछ है नहीं। तो इसलिए उसको कहते हैं फल देने वाला वृक्ष। तो जो वेद रूपी कल्प वृक्ष है, तरोर कहते हैं वृक्ष को, गलितम कहते हैं पके हुए को, जो अपने आप पक गया है और नीचे गिर गया, वेद से अलग हो गया। पका हुआ फल वृक्ष से अलग हो जाता है, इसलिए भावार्थ के अंत में चक्रवर्ती पाद लिखते हैं वेदों के अंदर ये नहीं मिलेगा। ये जो कृष्ण के प्रेम का रस है ये वेदों में है ही नहीं, क्योंकि उनसे अलग होके नीचे पक्का फल गिर गया। अब ये फल वेद में नहीं है, उससे गिर के गिर गया, अलग हो गया है, इसलिए वेदों में ढूंढने से नहीं मिलेगा। वेदेशु अदुर्लभम दुर्लभम आत्म भक्तो, तो ये फल अब वेदों में नहीं, वेदों के न कर्म कांड में है, न ज्ञान कांड में है, न उपासना कांड में है, उनसे ये बहुत ऊपर के स्तर का है, परम धर्म है। गलितम फलम, पका हुआ फल, तो क्या ऊपर से गिरा फटा नहीं, नहीं, बड़ी सावधानी से ऊपर की शाखा में नारायण ने नीचे वाली शाखा में ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने अपने से नीचे वाली शाखा में नारद जी को दिया, नारद जी ने इसको व्यास देव को दिया, और व्यास देव को तो इतना अच्छा लगा और स्नेह के कारण अपने पुत्र सुखदेव के मुख में रख दिया, केसी के मुख से ये बड़ा सुंदर लगेगा और मीठा बनेगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसका भाव हुआ कि भागवत केवल एकमात्र परंपरा से ही प्राप्त हो सकता है। ऐसे प्रमाणिक जब तक गुरु परंपरा नहीं है, तब तक भागवत को अपने मन माने ढंग से प्रस्तुत करना और कथाओं के माध्यम से दो पैसा इकट्ठा करके अपने जीवन का निर्वाह करना भागवत के रस को प्राप्त नहीं कराएगा, प्रेम भक्ति का उदय नहीं करेगा। लिखा है कि तत्काल भगवान के प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाती है, भगवान हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। एक भागवत कथाकार कई साल कथा करने के बाद, एक बहुत बड़े गोवर्धन में, आज से 20-25 साल पहले हमने दर्शन किया था, 101 साल के बहुत बड़े भागवत आचार्य गोवर्धन के मुखारविंद के सामने ही रहते थे, हम दर्शन करने एक बार गए थे, बहुत सालों की बात। पंडित जी कहते थे, गया प्रसाद, मैं समझता हूँ श्रीमान पंडित जी पूजन्य गया प्रसाद जी नाम थे, बड़ा गोवर्धन से रसिक भक्त थे। उनसे जाके पूछा, भागवत में लिखा है कि भगवत प्रेम का उदय होगा। आज हमारे को कई साल हुए हैं भागवत पाठ कर रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, सब कथाएं कर रहे हैं, अभी तक हुआ तो कुछ नहीं। तो बहुत बड़े सहज स्वभाव के महात्मा थे, का नहीं आप तो बहुत अच्छा है भागवत की कथा करते हैं, भगवान कृपा करेगा। बोला नहीं अभी तक हुआ क्यों नहीं। तो कह दिया कि जिस काम के लिए आपने कथा किया उसमें कोई कमी रह गई क्या? आपने कथा की धन के लिए तो आश्रम बन गया, कोठी बन गई, और सब कुछ आपको धन में कोई कमी रही क्या भागवत से? अगर आपने भागवत से जो भी मांगा होता वो देता, क्योंकि ये तो सब कुछ देने वाला है। कोई छोटी सी आशीर्वाद में खुश हो जाता है, और जो इसमें खुश नहीं होता है उसी को तो भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। तो प्रायः लोग भागवत से यही कुछ प्राप्त करते हैं, कौन? जो परंपरागत नहीं है, अथवा परंपरा का जो प्रमाण और उसके माध्यम से सुखदेव ने जिस प्रकार से नव स्कंद पूरे करके दसम स्कंद में प्रवेश किया है, ऐसे जो भगवत तत्व को नहीं समझेंगे तो भगवत लीला को कहां से समझेंगे। सुख मुखाद, सुख वैसे तोते को कहते हैं, तोता भी सुख है, और यहां सुखदेव गोस्वामी तो साक्षात राधा रानी का सुख है, जो गोलोक धाम में राधा रानी को कृष्ण के प्रेम की गाथा सुनाता है। ये सामान्य सुख नहीं है, राधा रानी का सुख है। और जब पके हुए फल में कभी तोता चोंच लगाता है अपनी लाल, तो वो फल और रसीला हो जाता है। श्री प्रभुपाद लिखते हैं यहां सुखदेव के मुख का मतलब ये नहीं है कि तोते की तरह रटा हुआ भागवत उसने बता दिया, ऐसे आवर्तिक नहीं, नहीं, उसको प्रस्तुत किया जैसे लोग सामने बैठे थे, उनको सामने रखकर सबको कैसे संतुष्टिजनक उत्तर दिया जाए और सबके हृदय में भागवत कैसे स्थान बनाए, ऐसे योग्यता से प्रस्तुत किया। केवल आवृत्ति नहीं की, परंतु यथा समय यथा पात्र यथा काल पात्र देश को देखकर और उपयुक्त रूप से भागवत को प्रस्तुत किया। तो ये फल है, इसमें है क्या? अमृत और द्रव्य। द्रव्य कहते हैं रसीली चीज, जो प्रभुपाद लिखते हैं सेमी सॉलिड आर जस्ट लाइक लिक्विड, जैसे आम का रस होता है, तो ये रस है, ये परिपूर्ण रस है। और संयुतम का मतलब है हर प्रकार से परिपूर्ण रस है, इसमें तो न छिलका है न गुडली है, ये तो परिपूर्ण रस है। क्या है भागवत? रस है। लेकिन रस के बाद लिखा है अमृत द्रव्य संयुतम, और ये भागवत का परंपरा का परिचय देकर वेदों का पका हुआ फल कहकर फिर कहते हैं पीबत भागवतम। भागवत का मतलब जो भगवान का है, तो भगवान का है तो ये केवल भगवान ही दे सकते हैं भाई, जो चीज जिसकी होगी वही देगा ना। तो भागवत भगवान का है, और ये भगवान केवल भक्तों को ही रस देते हैं, सबको नहीं देते। ज्ञानी और कर्मी तो इसका सोच भी नहीं सकता, उनके लिए ये उपलब्ध नहीं है, क्योंकि भगवान का है, और भगवान देते हैं उसको जिस के हृदय में, जिसके ऊपर किसी भक्त ने कृपा की है और जिसके हृदय में भगवान की कथा सुनने के लिए रुचि हुई है। तो पियो भागवत को रसम आलयम, भागवत के रस को पियो। आलयम का मतलब क्या है? लय का मतलब है मुक्ति, लय हो जाना का मतलब मुक्त होना, चाहे ब्रह्म में लीन होने वाली मुक्ति हो अथवा वैकुंठ में सारूपिया सालोकिया सारेष्टि मुक्ति हो, इसको लय कहते हैं। और आलय का मतलब उससे भी परे, इन सारे मुक्तियों से परे। तो क्या है भगवान का सानिध्य? भगवान का सानिध्य, भगवान के साथ सेवा का शुभ अवसर। रस में, कौन से रस में? दास्य रस में, सखा रस में, वात्सल्य रस में, माधुर्य रस में, भगवान के साथ सेवा मिले। और आलय का एक अर्थ और है, आलय का अर्थ है भाव की स्थिति में भक्त के अंदर आठ सात्विक भाव, आठ प्रकार के भाव, आंसू आना, रोमांच हो जाना, नृत्य करना, और आठवां है मूर्छित हो जाना, उसको कहते हैं लय होना। तो जब तक कथा तब तक पियो जब तक भाव भक्ति का उदय हो और आप मूर्छित हो जा। बोला मूर्छित होके फिर पी नहीं सकते, तो बोलेंगे, तब बोलेंगे मुंह दोबारा पियो। जैसे मूर्छा समाप्त हो फिर कथा पीना शुरू करो। कब तक पियो? जब तक जियो तब तक पियो। और बार बार इसके अंदर अद्भुत और मधुर रस और मधुर होता जाएगा। तो यहां रसम, ये कौन सा रस? भगवान रस कौन है? रस है श्री कृष्ण। इसी के ऊपर सबसे ज्यादा चक्रवर्ती पाद ने रस श्री कृष्ण है, और इस रस को ही प्राप्त करना है, और भाव की स्थिति में बार बार इसको पीना है। तो रस लियम, वैसे आलय समुन्द्र को भी कहते हैं, इसलिए भक्ति रसामृत सिंधु के अंदर जो रस है वो रस भागवत के, इस भागवत से लिया गया है, वो भागवत के रस का सागर है भक्ति रसामृत सिंधु। मुंह का मतलब बार बार, और अहो का मतलब आप दोबारा पियोगे तो और मीठा लगेगा, और रसीला लगेगा, और हृदय को गदगद करने वाला लगेगा। कौन पिएगा? रसिका, जो रस को जानते हैं वही पी सकते हैं। जो रसिक भक्त हैं, इसका मतलब भाव भक्ति में जो आप पहुंच चुके हैं, जिसका स्थाई भाव भगवान के प्रति, श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में 12 भाव लिखे हैं, 5 स्थाई भाव हैं और 7 सहयोगी भाव है। 5 भाव को पोषण करने के लिए, और प्रभुपाद ने उदाहरण दिया है कि सबसे उत्तम संसार के अंदर देखो, संसार की दृष्टि से लड़की लड़का आपस में मिलते हैं तो प्रेम होता है, उसको माधुर्य कहते हैं, लेकिन अगर उनका झगड़ा हो जाए तो फिर एक दूसरे से भयानक भी हो जाता है, और कभी कभी तो रौद्र हो जाता है, क्रोधित हो जाते हैं, और कभी कभी एक दूसरे को मारा मारी पे आ जाते हैं। तो ऐसे ये भाव, ये 12 जो है रस हैं, और ये 12 रसों का अखिल रस अमृत मूर्ति श्री कृष्ण है। वैकुंठ में 2.5 रस है, और वो भी रस जो है 2.5, वो भी ऐश्वर्य वाले रस हैं, इससे ऊपर नहीं है। शांत रस है, दास्य रस है, और थोड़ा सा सखा रस है, लेकिन है सारा ऐश्वर्यमय। द्वारका में 5 रस हैं, 5 रस हैं, लेकिन ऐश्वर्य युक्त हैं, दास है, सखा है, वात्सल्य है, माधुर्य है, शांत भी है, लेकिन है सब वो ऐश्वर्यमय। लेकिन वृंदावन में केवल ये सब रस हैं 5 के 5, और माधुर्य भाव में है, यहां ऐश्वर्य नहीं है। और इसमें भी राधा कुंड में तो केवल एक माधुर्य रस है, और कोई रस को वहां प्रवेश ही नहीं है, इसलिए सबसे ऊपर है राधा कुंड। गोवर्धन में भी माधुर्य के साथ सखा रस है, उधर गौचरण के लिए सखा जाते, और ये माधुर्य के रस हैं सारे, इसमें ऐश्वर्य नहीं है। तो ये सारा रस, रसराज कृष्ण जो है उसको कौन पी सकते हैं? जो रसिक हैं। बोला रसिक किसको कहा जाए? बोला जो रस में डूबा रहे। एक उदाहरण महाराज रसिक का दे रहे थे महात्मा, कि 100 सौराख वाला, 100 छिद्र वाला मटका हो और नदी से भर के आना हो, और भरा हुआ चाहिए तो एक ही रास्ता है, उसको नदी में पधरा दो, नदी में पड़ा रहेगा भरा रहेगा। तो जो ऐसे भागवत के रस के सागर में पड़ा रहेगा वही भरा रहेगा, उसको रसिक कहते, उसके बगैर रह नहीं सकता। और भाव का, और यहां भूवी का अर्थ क्या है? वैसे भूवी का मतलब इस भूमंडल में ये रस है, इस मानव जन्म में, लेकिन इस भाव को अगर रसिक और भावुक को दे, दोनों को देखेंगे तो यहां भूवी का अर्थ हो जाएगा वृंदावन। और जहां रसिक है गोपियां और रस का पान करती हैं गोपियां, भगवान के अधरा अमृत के रस का पान करती हैं, इसलिए कहते आंखों में रस हो या मन में हो तो वो निकल जाएगा, रहेगा नहीं। इसलिए वेद कहते हैं, वेद की ऋचाएं गोपियां बन के ब्रज में आकर कृष्ण के अधरा अमृत का रसास्वादन करने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहती थी ऋषिचारी गोपियां। तो भावुक और रसिक ये बहुत ऊपर की कोटि के जो भक्त हैं, इसी रस का रसास्वादन करते हैं। तो ये है भागवत का मधुरता। श्रील प्रभुपाद रसिक के लिख लिखते हैं, ओ बहुत बड़े दक्ष, ओ समझदार व्यक्ति, भागवत का रसास्वादन करो, जो वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है और सुखदेव के मुख मुखारविंद से अधिक मीठा हो गया है। ये पीने में बड़ा अच्छा लगता है लेकिन बार बार पियो। और किसको अच्छा लगता है? जो मुक्त है उनको भी अच्छा। यहां लय का अर्थ है मुक्त, आलियम का अर्थ है, जैसे सुखदेव जैसे पहले से ब्रह्म मुक्त थे उनको भी ये रस अच्छा लगा, ये रस उनको भी खींच के भागवत की तरफ लाया। और चक्रवर्ती पाद ने लिखा है, हे रसज्ञ, रस को जानने वाले, ये भाग्यशाली जीव, निरंतर सुखदेव के मुख से प्रवाहित इस भागवत का पान करो। वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है वो, ये धरती के ऊपर हमको प्राप्त हो रहा है, नीचे भूमि के ऊपर प्राप्त हो रहा है। ये अमृत है, ये स्वर्ग का अमृत नहीं है जिसके क्षीण पूर्ण हो जाएंगे फिर समाप्त हो जाएगा। ये तो अमृत है, द्रव्य है, मधुर, अति मधुर है। सब प्रकार की मुक्तियों को देने वाला है और उनसे भी ऊपर है। तो प्रायः इसका भावार्थ हमने पूरा पढ़ लिया है, एक दृष्टि से श्लोकों में मैं कह दिया, श्लोकों के शब्दों में इसके भावार्थ का शिला चक्रवर्ती पाद का तो बता दिया है। मुंह का एक दूसरा अर्थ है कि बार बार पीने से बड़ा और मधुर होता जाएगा और इसका और आपको रस आएगा, इसलिए अहो लिखा है, बहुत बड़ा आश्चर्य है। और ये कब होगा? हे रसिक, रसिक के लिए लिखते हैं, ऐसे भक्त जिनके हृदय में रति का उदय हुआ है, रति कहते हैं भाव भक्ति को, तो रसिक वो है जिसके हृदय में भाव भक्ति का उदय हुआ है। हे रसिक, और ये रति आगे चल के स्थाई भाव हो जाएगी, तब वो रस का रसास्वादन करेगा, ये ज्ञानी और कर्मी नहीं कर सकते। हे भाग्यशाली भावुका, भाव एक भाग्यशाली अर्थ है भावुका का, अब बहुत बड़े भाग्यशाली हो, दूसरे बेचारे का भाग अच्छा नहीं है, दुर्भाग्य है। दूसरा अर्थ भावुका का है, ये किसी आचार्य भट्टनायक के शब्दों को चक्रवर्ती बात कहते हैं, भावुका का दूसरा अर्थ है मधुरता और सुंदरता का रसास्वादन करना किसी चीज का। तो भावुका का अर्थ है भगवान जो रसमय है, जो रस मूर्ति है, उसका जिसने रसास्वादन किया है वो है भावुक। इसको कहते हैं भावुक, जिसने भगवान जो रस मूर्ति है। अब भगवान जो रस है उसके लिए कहते हैं वेदों के श्लोकों का वर्णन करते हैं, हमारे शरीर को कहते हैं अन्नमय शरीर, प्राणमय शरीर, मनोमय शरीर, विज्ञानमय शरीर और आनंदमय। तो ये हमने 13वें अध्याय में पढ़े थे, ये कोश हैं सारे। अन्नमय पुरुष, प्राणमय पुरुष, मनोमय पुरुष, विज्ञानमय पुरुष और अंत में आनंदमय पुरुष, और इसको कहते हैं ब्रह्म। और ब्रह्म सूत्र में इसको कहा गया है आनंदमयो अभ्यासा। आनंदमय भगवान को कहते हैं, आनंद आत्मा ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठम, ये श्लोक है। इसका मतलब जो रसमय भगवान है उसकी जो पूछ है, पूछ का मतलब पूछड़ी है, उसको ब्रह्म कहते हैं। वो पूछड़ी है ब्रह्म, इसलिए ब्रह्म वो है जो भगवान के ऊपर आश्रित है। तो यहां ब्रह्म की बात नहीं हो रही है, यहां रसमय भगवान की बात हो रही है। और ये श्लोक सारे रस इस श्लोक में है, और इस श्लोक में ब्रह्म से के रस को इतना महान नहीं कहा गया है। मलानाम अश्नहीनृणाम नरवरा स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, गोपानाम स्वजनो वसताम क्षति भुजाम, शास्ता स्वपित्रो शिशु मृत्यो भोज पतेर विराद अविदुषान, तत्वम परम योगिनाम वृष्णीनाम पर देवतेति विदितो रंगम गता सा अग्रज। अपने भाई बलराम के साथ जैसे भगवान श्री कृष्ण रंगमंच में प्रवेश किया, जो चाणूर और मुष्टिक आदि खड़े थे उन्होंने देखा ये तो हमारी मृत्यु है, उनको भयानक रस देखने में आया, ये हमारा मृत्यु है। नरवर स्त्री नाम समर मूर्ति ना, और जो सुंदर सुंदर नवयुवक स्त्रियां थी मथुरा की, उन्होंने कहा ये तो प्रेम के योग्य है। सुमर मूर्तिमान, सुमरो कामदेव का मूर्तिमान रूप है। गोपानाम स्वजन, जो ग्वाल बाल आए थे उनका, अरे हमारा तो ये मित्र है। सताम क्षति भुजाम, असताम क्षति भुजाम शास्ता, राजाओं ने देखा तो ये तो शासन करने वालों में सर्वश्रेष्ठ है। और नंद आदि बैठे थे, पित्रो हो शिशु, उन्होंने कहा हमारा तो बालक है। तो वात्सल्य रस आ गया, विभत्य रस आ गया, सखा रस आ गया, मृत्यु भोज पति ही। कंस ने देखा ये मेरे लिए साक्षात मृत्यु है। विराट अविदुषान तत्व परम योगी नाम, योगी तो कहने लगे ये साक्षात ब्रह्म है। अविदुषान तत्वम विराट अदुताम्हा, जो कम बुद्धि वाले थे, जो भगवान के विराट रूप को मानते हैं ऐसे लोग, वो विराट रूप यही है ऐसे कह रहे। और जो वृष्णिवंशी है वो कहते तो ये तो हमारे अपने ही कुल के आराध्य हैं। और श्रीधर स्वामी ने श्लोक के ऊपर लिखा है भगवान श्री कृष्ण भगवान रस की मूर्ति थे, जिसमें सारे रस थे, मधुर रस से लेके सारे रस उसके अंदर थे। इसका मतलब कृष्ण सारे रसों का समूह है। गीता भागवत में कृष्ण को रस ही कहा गया है। अगर जीव किसी को ये रस मिल जाए तो उसको जो आनंद मिलेगा उसको कहते हैं आनंदस्य मीमांसा भवति, ये तैतृय उपनिषद में है। इसका दूसरा अर्थ है भगवान विष्णु ने द्वारका में ब्राह्मण के बच्चे को जन्म लेते ही अपने साथ ले जाए, मर जाए, अर्जुन ने वचन दिया रक्षा करूंगा, रक्षा नहीं कर पाया। श्री कृष्ण और अर्जुन जब विष्णु के पास गए, भगवान नारायण के धाम में गए तो भगवान ने कहा, माँ विष्णु ने कहा, मैं इसलिए ब्राह्मण के पुत्रों को यहां लाया कि मैं आप दोनों का दर्शन करना चाहता था। आप धर्म की रक्षा के लिए धरती के ऊपर गए हैं, जैसे ही आप असुरों का संहार करो, धरती का भार हरण करो, जल्दी वापस आना। मुझे इस श्लोक को यहां उदित किया है, इसका दूसरा अर्थ है तैतृय, दूसरे भगवान के जो रूप हैं वो भी कृष्ण के रूप में आ सकते हैं और आनंद लेते हैं। द्विजात्मजा मेययो दिदृक्षोणा, आपको देखने के लिए ब्राह्मण के बच्चों को मैं लाया। मयो उपनीता भुवि धर्म गुप्त्या, मैं लाया था, आप धर्म की रक्षा के लिए गए हैं पृथ्वी के ऊपर, और जब असुरों का वध कर लो जल्दी वापस आना, अंति में आना, मैं दर्शन करना चाहता हूं, मुझे अच्छा लगता है। और लिखा है भगवान श्री कृष्ण का ऐसा अद्भुत नर आकृति का मानव रूप है, योग माया के द्वारा, जो वैकुंठ के भगवान को भी आश्चर्य में डाल सकता है। ये तीसरे स्कंद के दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक है। यनमर्त्य लीलोपयकम् स्वयोग माया बलम दर्श दर्शयता गृहीतम् विस्मापनम विस्पानम विस्पामनम, विश्व विस्मय में पड़ गए, आश्चर्य में पड़ गए। स्वस्य च सौभगर्दये परम पदम भूषण भूषण अंगम, जिनके अंगों के ऊपर आभूषण आने से आभूषण सुंदर हो जाते हैं, इतने जिसके अंग हैं, ये बात कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त और मित्र और भाई वृष्णु वंशियों में सर्वश्रेष्ठ उद्धव जी कह रहे हैं कि ये है श्री कृष्ण, जो वैकुंठ को भी आश्चर्य, भगवान नारायण को भी आश्चर्य करने। तो जो भागवत में कहा कि फल और रस वो दोनों कृष्ण है, कल कहा था ना, भागवत दीप, भागवत सूर्य, भागवत रस, भागवत फल और भागवत मोहिनी मूर्ति, तो रस और फल तो साक्षात श्री कृष्ण ही है भागवत में, और जो नीचे गिरा है वो सुखदेव के मुख में व्यास देव ने बड़े प्रेम से रखा है, और सुखदेव ये बात अब स्वयं अपने मुख से कहेंगे 3:25 में। ये शाम अहम, भगवान कहते हैं, प्रियात्मा सुतश्च सखा गुरु सुहृदोदैवम इष्टम, क्योंकि भक्त कोई मुझे कहता है मेरा मित्र है, कोई कहता है मेरा बंधु है, कोई कहता है मेरा पुत्र है, और कोई कहता है मेरा शुभचिंतक है, तो मैं किसी को भी वंचित नहीं करता हूँ, सबके साथ प्रेम का आदान प्रदान करता हूँ। और भूमि का मतलब है यहाँ ब्रजभूमि, और भावुक और रसिक हैं गोपियाँ, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के रस का रस आस्वादन किया, जो भगवान के सुंदर श्री विग्रह से भागवतम, तो यहाँ भागवतम का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण, और पीवत भागवतम रसमालयम उसका अर्थ है आलयम का, यहाँ अर्थ हो जाएगा अगर गोपियों का नाम लेंगे तो, जिन्होंने कृष्ण को, जिनको कृष्ण ने भुजाओं में आलिंगन किया, जिन्होंने कृष्ण को से आलिंगन किया, आलयम लो आलिंगन करना। और इसका एक दूसरा अर्थ अगर लिया जाए निगम कल्पत्रु का, और अगर गोपियों का यहां ये अर्थ लिया जाए तो फिर निगम कल्पत्रु का अर्थ है रागनों का भक्ति, चक्रवर्ती पाद लिखते हैं। तो ये अमृत जो है, ये जो रस है, ये जो अविनाशी अमृत है, ये मन और आंखों में आता है, द्रव्य है, लेकिन चला जाता है, इसलिए इसको पीने के लिए होंठ चाहिए, और इसलिए रागनोगा भक्ति का निगम कल्पत्रु गलितम फलम का अर्थ है रागनोगा भक्ति, और ये है पका हुआ फल वेदों की वृक्ष का। और ये रागात्मिका भक्ति कैसे है कि गोपियों के चरण चिन्हों में चलना है, उनके अनुगामी बनना है। और तब क्या होगा, बृहद वामन पुराण में लिखा है, ये वेदों में वेद कहते हैं, ये बृहद वामन पुराण में है कि सारे वेद स्तुति कर रहे हैं कि हमको गोपी बना दी ताकि हम भगवान श्री कृष्ण के अधरा अमृत का पान कर सके। दसवें स्कंद के मैं भी गोपियों वेद की स्तुति है ये। अब एक श्लोक का परिभाषा लिखा है वो भगवत गीता का है, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाम, और ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाम अमृतवस्य अव्यस्य शाश्वतस्य धर्मस्य सुख एकांतिकस्य च। तो लोग इसमें कहते हैं कि ब्रह्म जो है, तो कह रहे ब्रह्म तो भक्ति से मिलता है लेकिन ब्रह्म के बाद जो अमृत है अविनाशी है ये सर्ग का अमृत नहीं है, और शाश्वत है ये भक्ति धर्म है, और एकांतक प्रेम है। असल में प्रेम ही प्राप्त होता है, ब्रह्म की प्राप्ति का यहां उद्देश्य नहीं है। भक्ति से ब्रह्म कैसे प्राप्त होता है लोग कहते हैं, तो ब्रह्म तो पहले प्राप्त होता है। मैं इस ब्रह्म का आधार हूं, श्रुति में जिसको ब्रह्म कहते हैं उसका आधार मैं हूं, मैं अमृत हूं मृत्यु, मैं मुक्ति देने वाला हूं, मैं निरंतर सदा रहने वाला हूं, और साधन में तो रहता हूं लेकिन साध्य जो प्रेम है तब तक रहता हूं, उसका अर्थ है एकांतिक भक्ति। तो यहां इस श्लोक का भावार्थ पूरा होता है। विष्णु धर्म का एक श्लोक लिखा है, यथाच्युतस्तम परतः परस्मात् स ब्रह्मा भूतात् परतः परात्मा तथाच्युत त्वं कुरु वांछितं तं मां पदं चापहरा परमेय। जैसे भगवान अच्युत वो सबसे महान है, ब्रह्म से भी उत्तम है, परमात्मा से भी उत्तम है, इसलिए वो अनंत अच्युत मेरी इच्छा पूरी करे और मुझे सब वांछितम तम ममा पदम च अपहरापमेयम, सब दुखों से मुक्त करे। हरिवंश पुराण में भी अर्जुन और महाविष्णु की ये तत्परम परमम ब्रह्म सर्वम, तो वो जो परम ब्रह्म है जो सर्वत्र है, ओ हे अर्जुन वो मेरा ही प्रकाश है, और ब्रह्म संहिता में तो ये प्रतिष्ठ हम सब जानते हैं श्लोक को, यस्य प्रभा प्रवतो जगतांड कोटि कोटिषु अशेष विशुद्धा विशुद्धादि विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेषम वशेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। सो ये रस श्री प्रभुपाद ने लिखा है, ये भागवत जो है ये बहुत ही महान ग्रंथ है, दिव्य है, ये वेदों का सबसे उत्तम पका हुआ फल है, वेदों में सारे प्रकार का ज्ञान है, प्रभुपाद नाम लिखे हैं, ज्ञान प्राप्त करने के साधन है, मेडिसिनल केमिकल फिजिकल मेटाफिजिकल सब्जेक्ट मैटर्स जो भी मानव को शरीर और आत्मा को साथ रखने की जरूरी है वो सब है, परंतु इन सब से ऊपर है भगवान को जानने का, वो है रस, वो है भागवत में, और फिर 12 रसों के नाम लिखे। सो यहाँ हम कथा को विराम देते हैं। हरे कृष्णा, किसी का कोई प्रश्न है जिज्ञासा है, कल फिर हमारा दूसरे अध्याय का मैं समझता हूँ क्या है, दूसरे का तीसरा चौथा ऐसे कुछ है, सुखदेव महाराज की स्तुति और व्यासदेव की स्तुति का कल वर्णन करेंगे। कोई प्रश्न है जिज्ञासा है, कल 2-2, 2-3, 2-4 शायद। हाँ, यम प्रवर्जतम उपेतम अपेत कृत्यम द्वेपायनु व्रकात्राहुजा आजुहाव पुत्रेति तन्मय तन्मयता तरवो अभिनिदोस्तम सर्वभूतर्द्यम मुनि मुनिमान तो अस्मि। ये कल के लिए है। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न और जिज्ञासा? बहुत विस्तार तो नहीं कर पा रहे हैं, जितना हो सकता है कृष्ण कृपा से आपकी सेवा के लिए। हरे बोल। और कोई प्रश्न जिज्ञासा? प्रभुपाद की जय। गौर भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंद। क्यों भाई मुश्किल है? विषय मुश्किल है क्या? कुछ कुछ आ रहा है समझ में सबको?